यह कथा हो रही थी कि बलि महाराज स्वर्ग विजय कर लिए और गुरु बृहस्पति जी के मंत्रणा से देवगण स्वर्ग छोड़कर भाग गए, अलक्षित रूप से स्वर्ग से पलायन कर गए। इस प्रकार बलि महाराज के अधिकार में संपूर्ण विश्व आ गया। हाँ, वे बहुत सुंदर शासन कर रहे थे। एवं इस प्रकार जब पुत्रेश नष्टेश पुत्र माता अदिति के पुत्र इंद्र आदि देवता विनष्ट हो गए, नष्ट हो गए, तब देव माता अदिति अतप्य पर बहुत तप्त होने लगी, पर्यतप्य बहुत दुख अनुभव करने लगी। जैसे ऐसा लगता था अनाथ वक्त, जैसे उसका कोई नाथ नहीं न हो, अर्थात रक्षकहीन सहायकहीन की तरह दुखी होने लगी। यह नष्टेशु शब्द का अर्थ है अदर्शनम गतेशु। संस्कृत में नाश का अर्थ होता है अदर्शन, एक यह भी अर्थ। जब कोई व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा है तो कहा जा सकता है कि उसका नाश हो गया, वो नष्ट हो गया। एवं पुत्रेशु नष्टेशु, पुत्रेशु नष्टेशु का अर्थ है कि पुत्र जब अलक्षित रूप से रहने लगे, स्वर्ग छोड़कर चले गए, तब देव माता अदिति परी अतप्यता दुख को ताप कहते हैं संस्कृत में। जब कोई व्यक्ति हृदय में बहुत ग्लानि बहुत दुख का अनुभव करता है तो कहा जाता है कि वो तप्त हो रहा है, बहुत दुख का अनुभव करने लगे। तो दो कारण से पुत्रेशु नष्टेशु और त्रिविष्टपे हृदय, त्रिविष्ट स्वर्ग, स्वर्ग हृदय हर लिया गया बलात् इसके पुत्रों के अधिकार से। तो सहज ही माँ का हृदय है अपने पुत्रों के इस पराभव से, इस दुर्दशा से वो बहुत दुखी रहने लगी, अनाथ होकर। यद्यपि उसको इतना दुख अनुभव नहीं करना चाहिए था क्योंकि उसके रक्षक उसके पति थे, इसलिए वक्ति प्रत्यय का प्रयोग किया गया इस श्लोक में, वक्त अनाथ वक्त। सुखदेव गोस्वामी यह नहीं कह रहे हैं कि वो अनाथ थी, अनाथ जैसा शोक करने लगी, अनाथनी नहीं, उसके पति उसके रक्षक थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में ये समझना चाहिए कि श्री कृष्ण हमारे नाथ हैं, जो जगन्नाथ कहते हैं, सर्वेशम नाथ, जगताम जीवानाम नाथ जगन्नाथ, वो सभी जीवों के नाथ हैं। अतः किसी भी विषम से विषम परिस्थिति में धैर्य नहीं खोना चाहिए किसी व्यक्ति को, ये समझना चाहिए कि भगवान कृष्ण हमारे नाथ हैं, रक्षक हैं, उनको नाथ जी कहते हैं। हमारे यहाँ जगन्नाथपुरी में जो ठाकुर जी हैं वो तो जगन्नाथपुरी को नाथ द्वारा भी कहते हैं उधर, और इधर नाथ द्वारा श्रीनाथ जी को, श्रीनाथ जहाँ रहते ठाकुर द्वारा नाथ द्वारा। तो जगत के नाथ मतलब हम सबके, हम सभी जीवों के वास्तविक रक्षक, वास्तविक बंधु, सहारा श्री कृष्ण है। तो दो सहारा थे अदिति के, एक तो जो समस्त जीवों के सहारा है कृष्ण, और दूसरे उसके समर्थ पति थे। पर फिर भी अनाथवत पर तप्त अनाथी की तरह बहुत दुखी रहने लगे। इस प्रसंग में यह बात बहुत स्पष्ट की गई है कि चाहे हृदय में कितना भी दूषण हो, चाहे काम क्रोध लोभ कुछ भी हो, लेकिन वह हृदय भगवान की भक्ति करने जो कि होता है, किसी में दोष है इसलिए कहा नहीं जा सकता कि ये जीव भगवान की भक्ति नहीं कर सकता है। माता अदिति का अपने पुत्रों में ममत्व था, और जबकि अपनी ही बहन, खास सहोदरी बहन दीति की परंपरा में आने वाले लोग राजा बन गए, दैत्य थे, बलि महाराज, लेकिन उसके मन में अमर्ष था कि वे क्यों राजा हो गए, हमारी सौत के पुत्र क्यों राजा हो, मेरे देह से जन्मे हुए, मेरे उदर से जन्मे हुए लड़के ही राजा बन, मेरा बड़ा लड़का इंद्र ही राजा रहे, उसके मन में ये दुराग्रह। परंतु ऐसे दुराग्रही, ऐसे दोषपूर्ण हृदय में भी भगवान आए, पुत्र बने। इससे प्रेरणा मिलती है कि कोई भी व्यक्ति भक्ति करने में योग्य है, चाहे कितना भी दोष हो उसमें, कामी हो, क्रोधी हो, लोभी हो, कुछ भी हो, वो भगवान की भक्ति कर सकता है, क्योंकि भक्ति करना जीव का स्वरूप है। किसी भी स्थिति में हमारा स्वरूप जा नहीं सकता। तो वह अदिति रात दिन रोती रहती थी, तो अनाथवत शब्द बता रहा है कि उसके पति उस समय उसके साथ नहीं थे। कश्यप जी वास्तव में बहुत ही महान पुरुष थे, भगवत भक्त थे, और वे जानते थे कि जीवन का ध्येय है भगवान कृष्ण का भजन, इसलिए वे समाधि में थे। उनकी कई स्त्रियां हैं, 13 दक्ष प्रजापति की पुत्रियां उनकी पत्नियां बनी हैं, जिसमें अदिति सबसे श्रेष्ठ हैं। अदिति, दीति, सुरसा, इला, विनता, बहुत से उनकी स्त्रियां, और एक स्त्री का दूसरे स्त्री से नहीं बनता। उनके पास जैसी स्त्रियां हैं लोग फिर भी निर्वाह कर लेते हैं। दीति उनकी पत्नी है तो अदिति ही उनकी पत्नी। अब जब भी स्त्रियों ने कुछ मांग किया है इसे, तो यही कहे हैं कि प्रिय तुम भगवान का भजन करो, विष्णु से मांगो, यही कहा। एक बार दीति चाहती थी कि इंद्र का वध करने वाला मुझे पुत्र चाहिए, क्योंकि इंद्र ने हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष का वध करा दिया भगवान से, तो भगवान के प्रति दीति की कभी भी दुर्भावना नहीं हुई। यदि भगवान नृसिंह रूप धारण करके और 12 रूप धारण करके दोनों भाइयों का वध किए, परंतु दीति का विचार भागवत में दिखाया गया है कि वह इंद्र के प्रति द्वेष की थी, विष्णु के प्रति नहीं। वो कहती थी भगवान तो भक्तवत्सल है, भगवान को बहका करके, फुसला करके हमारे पुत्रों को मरवा दिया है, नहीं तो भगवान ऐसा नहीं कर, इसलिए इंद्र को मारने वाला पुत्र चाहिए। और उसने कश्यप जी की खूब सेवा बढ़ा दिया था, स्पेशल सेवा करती दी थी। अब जब प्रसन्न हो गए, कहने लगे मांगो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा, तो उसने कहा कि इंद्र की हत्या करने वाला मुझे पुत्र चाहिए। अब जो कश्यप जी बंधन में पड़ गए अपने वचन के, अपने ही ज्येष्ठ पुत्र को मारने वाला अब पुत्र चाहिए, तो कौन ऐसा पिता होगा जो अपने बड़े पुत्र को मारने के लिए एक नया पुत्र चाहेगा, चाहेगा आवे ही नहीं, इसकी क्या जरूरत है, जन्मे हैं वही ठीक है ना। लेकिन कश्यप जी वचन में बंधे थे, इसलिए उन्होंने कहा ठीक है। परंतु उन्होंने कहा कि प्रिय तुम पुंसवन व्रत का पालन करो, यदि वर्ष एक वर्ष तक तुम नियम का पालन करोगे तो तुम्हारा पुत्र इंद्रहा होगा, यही कहा। हा का अनुगामी भी होता है, तो संस्कृत के ज्ञाता है, दीति तो समझी नहीं। उनका कहने का आशय था कि एक वर्ष तक तुम भगवान विष्णु की पूजा करोगे, भक्ति करोगे, तो तुम्हारा पुत्र इंद्र का अनुगामी होगा, उस देवता होगा, ये उनके आशय था। वो लग गई भजन में, उनके वचन का आशय नहीं समझे, लग गई भजन में। बाद में इंद्र को चिंता हुई, वो आए गर्भ को मारे तो बच्चा को वज्र से तो साफ हो गया, फिर सातों पर मारे तो वे उनचास हो गए, तो समझ गए कि भगवान की भक्ति से ये बच्चे जन्म लिए हैं, मर नहीं सकते। तो फिर वे बच्चों के साथ गर्भ से प्रकट हुए दीति के सामने, देखिए व्यवहार भागवत में बड़े विस्तार से लिखा गया है। तो देखिए साल भर जो भगवान के नाम का जप किए, रात दिन भजन में लगे थे, तो इंद्र के प्रति उसका द्रोह पूरा पूरा वास्ट ऑफ हो गया था, निकल गया, प्रेम हो गया इंद्र के प्रति भगवान की भक्ति करने से। और पूछने लगी, बेटा मैंने तो एक पुत्र चाहा था, ये 49 पुत्र कैसे हो गए और तुम क्यों आए यहाँ? इंद्र बताए कि माँ, जब से तुमने संकल्प किया था इंद्र को मारने वाला पुत्र चाहिए, तब से मैं सोया नहीं, खाया नहीं, होश में नहीं, मैं तुम्हारे दोस्त को देखना चाहता था और तुम्हारे गर्भ में गया गर्भ को मारने के लिए, बच्चा को लेकिन मरा नहीं। 1 से 7 हुआ, 7 से 49 हुआ। वो माँ कहती है, बेटा मैंने भगवान की पूजा करके यह पुत्र प्राप्त किया, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरे पुत्र देवताओं के समाज में रहें, असुरों के समाज में न रहें, तो तुम ले जाओ स्वर्ग में इनको अपना भाई बनाकर, भाई थे। तो इंद्रदेव प्रणाम करके माता दीपी को ले गए अपने भाइयों को। तो आज भी 49 मरुदगण इंद्र के साथ रहते हैं। जब गर्भ में मारा बच्चे को इंद्र ने, तो वो रोने लगा, साथ होकर के रोने लगे। इंद्र ने कहा, माँ रुत, रो मत, रो मत, इसलिए जन्म के बाद उनका नाम हुआ मरु, रो मत। देखिए भगवत भक्ति का प्रभाव, वही क्रूर हृदय जिसका वध करना चाहता था उसी को 49 भाई दिया। और आज भी इंद्र के सबसे बड़े सहायक मरुदगण दैत्य कुल को जन्म लेकर के देवता हो गए, इंद्र के साथ रहते हैं। इस तरह परिवर्तन होता है। मैं यह कह रहा कि कश्यप जी कितना कुशल व्यक्ति थे कि परस्पर विरुद्ध हृदय को धीरे भगवान की भक्ति में लगाकर सिद्ध कर देते। यहाँ आप पढ़ेंगे सुनेंगे कि माता अदिति किस तरह अपने पुत्रों की ममता में पड़ी और उसको भी कश्यप जी ने भगवान की भक्ति में लगाया। भक्ति में लगने के कारण उसने भगवान को प्राप्त किया। और दीपी तो देवता प्राप्त की, मरुद गणों को प्राप्त की, इस तरह उसका हृदय शुद्ध हो गया। भागवत के इन शब्दों में बहुत प्रेरणा मिलती है। कोई कोई कल कभी कह सकते हैं कि अरे तुम्हारे जीवन में इतना दोष भरा है, क्या हरे कृष्ण कर रहे, भाई दोष गया नहीं है, नहीं गया, हरे कृष्ण कर रहे। लेकिन भगवत भक्ति अमोघ होती है, यह अशुद्ध करेगी, केवल समय का प्रश्न है। वैसे जो लोग भगवान की भक्ति के अंगों में श्रवण कीर्तन पूजन आदि में लगे हैं उनका निस्तार तो होगा ही।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे
हरे। यह सिद्धांत यहाँ आ रहा है। माता अदिति अपने पुत्रों के राज्य जाने के कारण और उनकी दुर्दशा, घर छूटना, खाना पीना नहीं मिलना, इस तरह से तो माँ रोज रोती रहती है। पर उसके पति समाधि में थे और उस समय घर पर नहीं थे, इसी वन में जाकर के भगवान के भजन में डूबे रहते। सारे चर और अचर जीव उनके संतान हैं कश्यप जी के, पर फिर भी भगवान के भजन में लगे रहते। तो दुखी रहती थी माता अदिति। तो एकदा कश्यप आश्रम भगवान गात निरुत्सवम निरानंदम समाधर विरतश्चिरात। भगवान कश्यप एकदा तस्या आश्रम अगात। परम समर्थ शक्तिशाली कश्यप जी एक बार अपनी पत्नी अदिति के आश्रम पर आए। आश्रम शब्द का यहाँ एक विशेष अर्थ है कि अदिति भी भोगों में नहीं रहती, उसके पुत्र जब राजा थे इंद्रादि, फिर भी वह नगर से दूर एक आश्रम जैसा बनाकर रहते थे। आप सभी आश्रम का अर्थ समझते हैं, भजन करती थी भगवान का, फिर भी पुत्रों में ममता उसकी थी। कश्यप जी कभी कभी अपनी पत्नियों के घर पर भिन्न समय में आते थे, तो बहुत काल तक समाधि में रहे, समाधि से उठ करके आए। समाधे विरतस्य चिरा, चिरकाल के बाद समाधि से उठे थे, तो उनको याद आई तो अपनी पत्नी अदिति के आश्रम पर आए। आश्रम को उन्होंने देखा निरुत्सवम निरानंदम, आश्रम में कोई उत्सव नहीं था और निरानंद। उत्सव का अर्थ है कि कोई सजावट नहीं, सफाई नहीं, और शोक के चिन्ह वहां भरे पड़े थे, कोई आनंद नहीं था, खुशी नहीं था। तो वातावरण बता रहा था कि बहुत बड़ा दुख पड़ गया। जब व्यक्ति प्रसन्न रहता है तो वास्तव में घर भी लगता है कि हंस रहा, भूमि भी प्रसन्न है, सब कुछ ठीक लगता है। लेकिन जब कोई दुख मन में छा जाता है तो वही घर लगता है कि वो काटने दौड़ रहा है, अच्छा नहीं लगता है ना। ऐसे देखा जाता है कि खुद कश्यप जी ने ये अनुभव किया कि आश्रम बिल्कुल निरानंद है, आनंद से ही और उत्सव से ही, सजावट आदि नहीं। इसके बाद उनकी पत्नी ने उनको आसन दिया बैठने के लिए, बहुत अच्छा आसन, आसन को ग्रहण किए। सपत्नी दीन बदनाम कृपासन परिग्रह सभाजितो यथा न्यायम इदम आह गुरुद्वह। हे महाराज परीक्षित, कश्यप जी आसन ग्रहण किए और माता अदिति उनकी पत्नी ने यथा न्याय देश और काल के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार उनका स्वागत किया। यहाँ स्वागत से तात्पर्य यह है कि पहले जैसा स्वागत करती थी अपने पति का, इस समय नहीं कर पाई, इसलिए जथा न्यायम कर। जथा न्यायम का अर्थ है कि जैसा समय अलाउ कर रहा था, जैसा देश था, जैसी परिस्थिति थी, अब उसके अनुसार पत्नी ने स्वागत किया अपने पति का। बेचारी बहुत दुखनी थी, लेकिन फिर भी जो धर्म है वो उसका पालन किया और कृतासन परिग्रह आसन ग्रहण किए बैठे सुखपूर्वक। इसके बाद उनकी पत्नी उनके पास बैठी नीचे। कश्यप जी पहले से ही देख रहे थे कि आश्रम में आनंद नहीं है, दुख के परमाणु भरे पड़े हैं, तब विशेष रूप से अपनी पत्नी को देखने लगे। श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं सह कश्यप पत्नी दीन बदना प्रति आ। उन्होंने देखा कि इसका दीन बदन हो गया, मुख है मुरझा गया, सुख गया है मुख, दुख के में दुख में वास्तव में मुख सुख जाता है, मुरझा जाता है। हृदय का दुख मुखमंडल पर प्रतिबिंबित होता है और सुख भी, जैसे हमको कोई खुशी हो तो हंसी आती है, मुख पर हंसी आती है, बदन पर हंसी आती है। लेकिन जब से कश्यप जी आए इस बार अपने घर, तब से उनके पत्नी के बदन पर कोई सुख का चिन्ह नहीं, वो बेचारी बहुत दुख में थी। यद्यपि वह दुख है उसके मन की उपज थी, अपने पुत्रों के प्रति अत्यंत ममता थी, इसीलिए वो इतने दुखी थी। और जो भी हो, कश्यप जी ने देखा दीन बदनाम, हमारी पत्नी का मुख सुखा हुआ है। और पत्नी शब्द दे रहे सुखदेव गोस्वामी जब देख रहे थे कश्यप जी अदिति पर, तो यही भाव है कि यह मेरी पत्नी है। और पत्नी का अर्थ होता है कि पति के द्वारा उसकी रक्षा होनी चाहिए। संस्कृत में पत्नी शब्द का इतना अर्थ होता है, रक्षा पाने का जिसका अधिकार है, और पति का अर्थ पालन करने वाला, रक्षा करने वाला। तो इस दुख की स्थिति में कश्यप जी का हृदय द्रवित हो रहा था कि मैं तो ऐसी समाधि लगाया कि अभी नहीं देख रहा हूं कि मेरी पत्नी कैसे है, बच्चे कैसे हैं। उन्हें कुछ अफसोस था होने लगा, लेकिन बहुत शक्तिशाली थे, महान भगवत भक्त थे, देखे और समाचार पूछने लगे। कश्यप जी के हृदय में कई प्रकार के विचार आने लगे, इसके दुख का कारण क्या हो सकता है। کیا دکھ پڑ گیا ہے, اتنا سوک میں کیوں ڈوب گئی ہے, پہلے کمل کے پشپ جیسا کھلا تھا اس کا مکھ, سندری تو اتنی ہی تھی وہ لیکن بیچاری دین تھی, شوق میں تھی. کبھی پوچھتے کشیپ جی پوچھ رہے ہیں اپنی پتنی سے, یہاں پر ایک پتی کا اور پتنی کا سمباد پرستت کیا جا رہا ہے, دکھ میں پڑی ہوئی اپنی پتنی سے پتی اس پرکار پوچھ رہا ہے, اپیبھدرم ن وپراڑام بھدرے لوکے دھناگتم ن دھرمسیا ن لوکسیا مرتیوشندانوتینہ. ہے بھدرے, سروپرتھم سمبودھن کیے بھدرے, بھدرے کا ارتھ ہوتا ہے کلیانی, ہے شبھ آچرن والی. بھگوان نے تم کو سندر شریر دیا ہے, سندر بدھی دیا ہے, بہت کال سے میں دیکھتا ہوں تمہارا بہت سندر سوبھاؤ ہے, لیکن آج کیوں چہرہ کنجلا گیا ہے, یہ بھدر شبد کا یہ ارتھ. اب تک تو تم بہت آنند میں رہتی تھی, لیکن کیا بات ہے کہ آج بدن کو بھلا گیا ہے, اور کہیں براہموں پر کوئی کشٹ تو نہیں آ گیا ہے, کوئی وپتی تو نہیں آ گئی. پہلا پرشن ہے کشیپ جی کا, کہیں براہموں پر کوئی سنکٹ تو نہیں آ گیا ہے. تو اس پر مان لیجیے اگر یہ پوچھا جائے کہ آپ براہموں کا ہی منگل کیوں پوچھ رہے ہیں, اس لیے پوچھ رہے کہ یدی براہمن سکھ سے رہیں گے تو وہ جنتا میں دھرم کا اپدیش کریں گے, اور جنتا جب دھرم کا پالن کرے گی تو سکھی رہے گی. تو براہمنوں کا کشل پوچھنے کے دوارا وہ سمست جگت کا کشل پوچھ رہے ہیں, چالو ایسے کر رہے ہیں. اب کے بھدرم ن وپراڑام بھدرے لوکے دھنا گتم, ہے بھدرے ادھنا اس سمے لوکے لوک میں کیا وپراڑام ابھدرم آگتم, براہمنوں کا ابھدر اکلیان ہو رہا ہے, نہ دھرمسیا نہ لوکسیا مرتیوشندانوتینہ, کیا دھرم پر کوئی سنکٹ آ گیا ہے. دھرم کا ارتھ ہے جیو کا سہج کرتویہ بھگوان کے پرتی, خاص کر کے منشیوں کا اور دیوتاؤں کا, جو بھگوان نے کرم نشچت کیا ہے ورن اور آشرم کے انوسار, اور دیوتاؤں کے سماج میں بھی شاستر ہے, وہاں بھی دھرم کا بھاجن ہے, اس کا یہ کرتویہ ہے, اس کا یہ کرتویہ ہے, تو اس کو دھرم کہتے ہیں. تو کیا اپنا کرتویہ پالن کرنے میں وشیش کر کے ایشور کی آرادھنا میں کوئی سنکٹ آ گیا ہے, کیا بھگوان کے بھکتی میں کوئی سنکٹ آ گیا ہے, اور لوکسیا کیا لوک میں سماج پر کوئی وپتی آ گئی ہے. کشیپ جیسے مہان پتی اپنی پتنی کے دکھ کو دیکھ کر اس طرح پوچھتے ہیں, کیا براہموں پر کوئی کشٹ آ گیا ہے, کیا دھرم پالن میں جنتا کو کٹھنائی ہو رہی ہے, یا جنتا پر کوئی آکسمک وپتی آ گئی ہے, کیا تم کیوں اتنا کھن ہو, اس طرح سے سماچار پوچھتے ہیں. بہت ہی سندر ودھی ہے سماچار پوچھنے کی. یہ پہلا پرشن ہے, اور لوکسیا کا وشیشن دے رہے ہیں مرتیوشندانوتینہ. آپ دیکھتے ہیں سماج میں کوئی ویکتی اپنے پریو سے ملتا ہے, ترنت پوچھتا ہے کیا سماچار ہے آپ کے گھر کا, یا فون پر پوچھتا ہے آپ کیسے ہیں کیسے ہیں, کیونکہ اس جگت میں سب طرح سے سمبھاونا ہے کہ کوئی نہ کوئی وپتی آ جائے گی, کیونکہ مرتیوشندانوتینہ یہ لوک سماج, سبھی جیو مرتیو کی اچھا کے ادھین ہے. چھند کا تھا اچھا, جیسے سوچھند کا تھا اپنی اچھا کے انوسار جو چلتا ہے اس کو سوچھند کہتے ہیں. مرتیو چھندر و پنہ سمست جیو سمودائے مرتیو کی اچھا کے ادھین ہے, تو مرتیو کب اس کو مار دے گا کوئی ٹھیک نہیں, کب کیا ہو جائے گا, کوئی روگ ہو جائے گا, کوئی درگھٹنا ہو جائے گی, کوئی مر جائے گا, یہ ہر ایک سمے سمبھاونا بنی رہتی ہے. اسی لیے بھائی بھی بہت کے سماچار پوچھ رہے ہیں, لوک میں کوئی وگھٹن ہوا, کوئی سنکٹ ہوا, کیا ہوا, ہوتا رہتا ہے واسطہ میں سنکٹ. इस प्रकार यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। यदि अदिति यह पूछे कि आप क्यों ऐसा प्रश्न करते हैं, कौन सा ये अपना है, ऐसे कथा के बीच में ऐसे नहीं करने से। हम लोग प्रतिदिन पढ़ते हैं, सुनते हैं और प्रत्येक दिन नई नई बात आती है, न्यूज कहते भी हैं उसको, है क्या न्यूज है, न्यूज का अर्थ है नया बहुवचन में, है ना। और नए नए समाचार में कोई ऐसा अखबार नहीं होगा जिसमें मरने का न्यूज ना हो, कुछ न कुछ, है ना, कुछ न कुछ जरूर मरने का निकलता है। और मरने के अनेक ढंग हैं, कभी भी कोई गलत समाचार आ सकता है कि इतने लोग मर गए, और उसमें फिर जो होते हैं कि हमारा ये संबंधी था, हमारा मित्र था, वो आ रहा था। अभी अभी दुर्घटना हुई ना, पेरिस से आ रहा था विमान लंदन, सबसे तेज गति से चलने वाला, 1500 माइल प्रति घंटा की रफ्तार से चलने, 100 आदमी उसमें बैठते थे, $10,000 प्रत्येक सवारी का दाम था, उनका किराया था, और 100 के अलावा 9 व्यक्ति और थे उस विमान के संचालक सेवक, लेकिन विमान ध्वस्त हो गया। समाचार में, टेलीविजन में, पत्रों में सब जगह आया कि इतने लंबा, और विमान गिरा तो 4 आदमी को और मार दिया, कोई होटल में। वो बेचारे क्या जानते थे कि हम पर विपत्ति आएगी, विमान में चढ़ने वाले या होटल में रहने वाले, अकस्मात आ गए। कभी भी वास्तव में कुछ भी हो सकता है इस संसार में, इसीलिए बहुत भयभीत अंतःकरण से, हृदय से कश्यप जी पूछते हैं कि लोग का कुशल है ना, मानो वो पूछे कि क्यों कुशल पूछते हैं, तो कश्यप जी कहते हैं क्योंकि मृत्यु छंदा निवर्तन, जीव मृत्यु के अधीन है, कभी भी कुछ हो सकता है, और तुम्हारा मुख मलिन है, इसलिए मुझे चिंता हो रही है कोई मर तो नहीं गया, इस प्रत्येक समय संभावना रहती है। मृत्यु सर्वत्र है, और कोई ऐसा नहीं है कि श्मशान नहीं मृत्यु मारती है, श्मशान में तो शायद कोई नहीं मरता है, मरने के बाद जाते हैं श्मशान में, है ना। कोई ऑफिस में मर जाता है, कोई घर में मर जाता है, कोई कहीं चलते समय विमान में, ट्रेन में, कई बड़े बड़े ट्रेन दुर्घटनाएं होती हैं, ट्रेन आपस में टकरा जाती है, और कुछ यात्री बेचारे सोए रहते हैं, और उसे सोई हुई दशा में यह महासंकट उनके सामने उपस्थित है, तो मृत्यु के अधीन सारा जगत हो, जब मारे या छोड़े उसके अधीन, इसीलिए समाचार में पूछा जाता है। कभी कभी तो हम लोग किसी वृद्ध व्यक्ति को या किसी रोग से ग्रस्त व्यक्ति के विषय में पूछते हैं, वो जी रहे हैं ना, ऐसा पूछते हैं, ये नहीं पूछते हैं कि स्वस्थ हैं, कैसे हैं, कभी जी रहे हैं ना। कभी कभी किसी ज्यादा दिन जीने वाले बूढ़े के व्यक्ति के विषय में लोग आश्चर्य करते हैं, अब तक जी रहे हैं। मतलब स्वाभाविक नॉर्मल स्थिति तो यही थी कि उनको मर जाना चाहिए। ये दशा है संसार में वास्तव में, और हम लोग इसी संसार में विषयों की खोज में हैं। मृत्यु का खड़ग, मृत्यु की तलवार हमारे गर्दन पर है, फिर भी हम विषय जोड़ रहे हैं, कैसे सुखी होंगे, क्या होंगे। तो संस्कृत के कवि ने एक श्लोक में लिखा है, न्यस्तम जथा मूर्धनि मुदाति नेशो जवाब शताब्द्यम वलिकल पितहसन मृत्युम समीपस्थितमत्य जानन भुनत्ति मर्त्यो विषयस्तथैव। जैसे वलिकल्पित मेष जिसको भद्रकाली के यहाँ बलि चढ़ाने के लिए ले गया गया है, मेष। मेष का अर्थ है बकरा या भेड़। आप लोग ऐसे अवतर जाइए और आगे बढ़ाइए, आगे बढ़ाइए आप लोग। काफी जगह है आगे। यह दृश्य आप लोगों ने देखा होगा, बकरा को बलि देने के लिए जब मांसाहारी लोग ले जाते हैं, भद्रकाली का बहाना रखते हैं, वास्तव में खाना वो चाहते हैं, तो ले जाते हैं बकरा को बलि चढ़ाने के लिए, तो किसी दूसरे बकरे की वहां पूजा होती है, इसकी भी पूजा होती है, तो बकरे के सिर पर अक्षत जव डालते हैं और तिलक करते हैं, तो दूसरा बकरा जिसको काटने के लिए ले गए हैं वो अन्य बकरा के सिर पर पड़े हुए चावल को चाटने लगता है, खाता रहता है जव, या कभी कभी फूल की माला वो लोग डालते हैं बकरा के गर्दन में लगा रहता है, तो वो बकरा बड़े आनंद से फूल की माला खाने लगता है। हम लोगों ने देखा है, उस मूर्ख को पता नहीं है कि दूसरे ही मिनट में उसके गर्दन पर तलवार चलने वाली है, वो कटने वाला समुपस्थित बिल्कुल निकट में मृत्यु है, लेकिन वो नहीं समझ पाता है। तथैव उसी प्रकार हम लोगों की दशा है, मृत्यु की तलवार उपस्थित है, लेकिन हम अभी विषयों को जोह रहे हैं, कहां हमें देखने को मिलेगा, खाने को मिलेगा, छूने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा, वही बलि के बकरा जैसी स्थिति है वास्तव में। और उसमें तो निश्चित है बकरा ने कि भाई आधा घंटा की देरी होगी चाहे 10 मिनट की, लेकिन हम लोगों का कब मस्तक पड़ जाएगा, कब मर जाएंगे, कोई गारंटी नहीं इस संसार में, लेकिन विषय को जोह रहा है जी। कश्यप जी जो समाचार पूछ रहे हैं, इसी सत्य को प्रकट करके क्या संकट आ गया है, किसी की मृत्यु हो गई, क्या हो गया, क्योंकि सारा जगत मृत्यु के अधीन है, काल के अधीन है, कुछ भी हो सकता है, लकवा मार सकता है, हार्ट अटैक कर सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, किसी भी तरह से मरना ही। और एक बाउंड्री है मृत्यु की, वहां तक तो बूढ़ा होकर के सबको मरना ही है, और बीच बीच में भी मारता रहता है, और मारने में ये विचार नहीं है कि बच्चा है, युवक है, एक वृद्ध है, नहीं, वृद्ध को तो एक खास बाउंड्री के अंदर मार ही देना है, लेकिन बीच बीच में बच्चों को भी मारता है, युवक को भी मारता है मृत्यु के पर। तो समाचार में पूछ रहे हैं, लोकस्य लोक का समाचार पूछ रहे हैं, तो कश्यप जी कहते हैं मृत्यु के अधीन रहने वाले लोग पर, समाज पर तो कोई संकट नहीं आ गया है, संकट कौन देगा, तो मृत्यु, और मृत्यु के पहले भी तो अनेक संकट है ना, इस तरह से समाचार पूछा जा रहा है। एक और श्लोक में कहते हैं, मित्रम कलत्रम इतरह परिवार लोको भोग एक साधन मीमा किल संपदो नहां, एक एक क्षण सतु भविष्य जत्र भूयो नायम न जो यमितरे न भयम न चैते। मित्र स्त्री और अन्य परिवार के लोग, और भोग के साधन अनेक घर कार और फर्नीचर और सारी संपत्तियां हैं, लेकिन एक क्षण सतु भविष्य, एक दिन ऐसा आएगा उस दिन न ये भोग की सामग्रियां रहेंगी, न परिवार रहेगा, न हम रहेंगे, न आप रहेंगे, न और न कोई वस्तु रहेगी, एक क्षण ऐसा है सब चले जाए, विदा हो जाए, वही समाज मनुष्य का चाहे भोगों की वही सामग्रियां चली जाती, कारें पुराण होकर के जम के यार्ड में चली जाती, कितनी बसें, कितनी कारें जिन पर घुमा गया है, यात्रा की गई है, कई रोड के किनारे पड़ी हैं और उसको कोई देखने वाला नहीं, इस तरह से शरीर चला जाता है, भोग की सामग्रियां चली जाती हैं, कब जाएंगी कोई ठीक नहीं। अद्यैव हसितम गीतम पठितम जय शरीर ही अद्यैव तेन दृश्यंते कष्टम काल से चेष्टित। अभी अभी आज ही जो पढ़ रहे थे, हंस रहे थे, गा रहे थे और आज ही वे शांत हो गए, पता नहीं चला। तो विमानों में या ट्रेन में यात्रा करने वाले लोग कुछ पढ़ते होंगे, हंसते होंगे, गाते होंगे, एक मिनट में सारा समाप्त। मृत्यु के अधीन यह सारा जगत है, इस बात का रियलाइजेशन करना चाहिए, वास्तव में समझना चाहिए, तब हम भगवान की भक्ति करेंगे, भयभीत होकर के काल से परे जाना चाहेंगे। तो इस तरह समाचार पूछा जा रहा है। अब आगे पूछते हैं, अपि वा कुशलं किंचित् गृहेषु गृहमेधिनी धर्मस्यार्थस्य कामस्य जप्रयोगो यजोगिनां। हे गृहमेधिनी, हे हमारे घर की स्वामिनी, कहीं तुम्हारे घर में कोई अर्थ धर्म और काम की कमी तो नहीं हो गई है, इसके लिए शोक हो रहा है क्या? बोले ब्राह्मणों का समाचार पूछे, उसमें उपलक्षण समझ लेना चाहिए, गौओं का भी, ब्राह्मणों का, गौओं का, धर्म का और समस्त जनता का समाचार पूछ रहे हैं, क्योंकि ये तो समाधि में थे, न्यूज़पेपर पढ़ने का प्रश्न ही नहीं था। समाधि में थे और इधर अपनी पत्नी की दुर्दशा देख करके शोक होने लगा कि कहीं कोई मर गया, क्या हुआ, ये हुआ। अब पूछते हैं, तुम्हारे घर में कहीं धन की कमी तो नहीं हो गई अकस्मात? इसको अर्थस्य कहते, गृहस्थ के यहां वास्तव में यदि पैसे की कमी हो जाए तो यह एक शोक की बात है, क्योंकि अर्थ ही उसको जिला रहा। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि एक मनुष्य दो प्राण से जीता है, एक तो प्रसिद्ध प्राण जो हवा चल रही है, सांस ले रहे हैं, प्राणदायी, लेकिन दूसरा प्राण पैकेट में रहता है या पर्स में रहता है, जहां तहां, बैंक में रहता है, जहां भी है। और इस प्राण वायु से ज्यादा महत्व है वही प्राण का, इसको वही प्राण कहा गया भागवत में, हूबहु शब्द है, बाहरी प्राण, उससे जीता है, कहीं जाएगा, खाएगा, रहेगा, घूमेगा, भाड़ा देगा, जो भी करना है। केवल इसी वायु से हम नहीं जी रहे हैं, धन से जी रहे हैं। तो साधु संन्यासी तो मान लीजिए जैसे भी रहे, जी जाएंगे, कोई बात नहीं, लेकिन गृहस्थ को अर्थ की कमी होती है तो उसके दुख का एक कारण दुखी हो। तो पूछता है पति, मतलब कश्यप जी पूछते हैं, प्रिय तुम्हारे पास पैसा नहीं है क्या, धन की कमी हो गई है, तुम्हें भगवान के भजन में, धर्म के आचरण में कोई कष्ट हो रहा है क्या? क्या ऐसी परिस्थिति है जिसमें तुम धर्म का आचरण नहीं कर सकती, बाधा हो रही है? अथवा कामस्य, काम की बाधा है क्या? क्या तुम्हें उचित भोजन नहीं मिलता है, आराम नहीं मिलता है? किसी भी मनुष्य के लिए काम बहुत जरूरी है। काम से तात्पर्य जिससे हम कपड़ा पहने हैं, ये काम के अंदर भोजन करते हैं या घर बना करके रहते हैं अच्छा से, सुख से, इसको काम कहा गया। तो कामस से समाचार पूछ रहे हैं कि क्या तुम्हारे पास सामान नहीं है, पैसा नहीं है और अपने कर्तव्य के पालन में तुमको कोई कष्ट हो रहा है, इसके लिए तुम इतना चिंतित हो क्या? कश्यप जी समाचार पूछ रहे हैं, मैं उसकी व्याख्या कर रहा हूं ज्यादा, वास्तव में समझने के लिए, नहीं तो कथा को मैं ऐसे भी पूरा कर सकता हूँ, एक एक बात पूछते जाते हैं और मैं आगे बढ़ सकता हूँ। मैं आपके चित्त को उस स्थिति पर ले जाना चाहता हूँ कि इस विश्व के सबसे बड़े गृहस्थ, सबसे महान भगवान की तीसरी ही चौथी पीढ़ी में है और वे अपनी पत्नी से इस तरह पूछ रहे हैं। तो गृहस्थों को सीखना चाहिए इस बात से, अपने पत्नी से वे इस प्रकार पूछे, पूछने की नौबत ही न आने दें, रखें ठीक से सब। अपनी पत्नी को ऐसी स्थिति में रखना चाहिए कि वह भगवान की सेवा कर सके, आरती कर सके, भजन कर सके, उसको अपने स्वधर्म पालन में कष्ट नहीं होना चाहिए। और दूसरा, उसको उसके लिए घर द्वार अलंकार सुख सुविधा देना तथा उसके पास पैसा भी होना चाहिए। अब तो स्त्री अपने नाम से भी रखने लगी है पैसा लेकिन ये पति का कर्तव्य है कि वह अपनी पत्नी के लिए रखे। पत्नी के पास रखने का मतलब है उसके द्वारा बच्चों के लिए। कश्यप जी पूछ रहे हैं धन की कमी नहीं हो गई ना, पैसे की कमी नहीं हो गई ना, इंद्रिय तृप्ति के लिए भोग्य सामान की कमी नहीं है ना। हाँ, इसी तरह समाधि में बैठे रहो और आकर कमी पूछो। हजारों वर्ष तक समाधि में थे और उनको ये भी पता नहीं है कि स्वर्ग का शासन किसके हाथ में गया, इसे उनको कोई मतलब भी नहीं होता। तो पूर्ण संसार से रिटायर्ड थे। तो कोई बलि राजा हो चाहे इंद्र राजा हो, उनके चित्त पर थोड़ा भी अंतर पड़ने वाला नहीं था। वो इतने सौम थे, महान थे। तो पूछ रहे हैं इस तरह से। एक बात कहते हैं कि धर्म सर्थस्य काम से जत्र योगो ही योगी नाम, अयोगी नाम। वास्तव में गृहस्थों के विषय में कश्यप जी कह रहे हैं कि हम लोग अयोगी हैं, योगाभ्यास नहीं करते हैं, भगवान की भक्ति नहीं कर पाते। लेकिन हम लोगों के लिए अपने कर्तव्य का पालन करना ही योग है। जत योगो यजोगी नाम, गृहस्थों को प्रायः हीन समझा जाता है, कहा जाता है कि माया में है, ऐसे है, वैसे है, और गृहस्थ अपने को हीन समझते भी नहीं, मैं तो माया में हूं। और दूसरे को जो गिरुआ कपड़ा पहना है, कुछ साधु है, काम धंधा नहीं कर रहा है, तो उसको कहते हैं धन्य जीवन है, तो बहुत भाग्यवान, भले वो भ्रष्ट जीवन हो, कुछ भी हो, लेकिन एक धारणा है। गृहस्थ समझते हैं कि हम तो माया में हैं, पाप कर रहे हैं और भजन नहीं कर रहे हैं। कश्यप जी भी इसी दीनता के साथ बोल रहे हैं, जबकि ये तो भगवान के पिता बनेंगे, उनका इतना बड़ा अधिकार, इंद्र जी के पुत्र हैं, बहुत महान है, परंतु कितना दीन भाव से बोल रहे हैं जत योगो ह्य योगिना। हम लोग योगाभ्यास नहीं करते हैं, न भक्ति योग, न ज्ञान योग, न अष्टांग योग, लेकिन यह गृहस्थ आश्रम ऐसा है कि हम लोग गृहस्थी के नियमों का पालन करें, अपना कर्तव्य करें, तो हमारे लिए यही योग है। अर्थात योगाभ्यास करके, साधना और भक्ति करके योगी लोग जो गति पाते हैं, हम लोग गृहस्थी में अपने धर्म का पालन करके उसको पा लेंगे। यह सिद्धांत है वास्तव में। आज भी देखिए, हम लोगों से कोई पूछते हैं कि महाराज जी हम कितना भजन करें, हम गृहस्थ हैं, तो गृहस्थों को कम से कम भजन बताया जाता है। ठीक है, आपके जिम्मे और भी बहुत से काम हैं, इसलिए आप इतना कर लीजिए, इतना कम से कम कीजिए, कम से कम 3 घंटा भजन कीजिए या 6 घंटा कीजिए, ऐसे कीजिए बताया जाता है। यही योग है। इसे यह नहीं समझना चाहिए कि गृहस्थ योगाभ्यास नहीं कर सकते हैं। योगाभ्यास का अर्थ है जाप करना,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे।
परंतु यह बात निश्चित है कि और जो योग हैं उसे गृहस्थ लोग नहीं कर सकते। अष्टांग योग उनसे होगा नहीं, ज्ञान योग होगा नहीं, उसके लिए एकांत में रहना होता है और गृहस्थों को समाज में रहने के लिए बाध्य रहना पड़ता है, तो क्या वे ध्यान लगाएंगे? कोई स्त्री घर में क्या ध्यान लगाएगी? बैठे तब तक बच्चा रोने लगे, तब तक इधर से फोन आ गया, मिनट मिनट में सब बाधा है, ध्यान क्या होगा? पर एक बहुत बड़ा अवसर है गृहस्थों को कि वे अपने धर्म का अगर पालन करें, गृहस्थ धर्म का, तो वही गति उनको प्राप्त होगी जो बड़े बड़े योगियों की होती है। क्योंकि गृहस्थों के द्वारा जो सेवा हो जाती है सभी जीवों की, यह एक बहुत बड़ा कार्य। और जितना भी चाहे साधु महात्मा कोई भी हो गया हो, वो जन्मा है गृहस्थों से, गृहस्थों से ही प्रभुपाद जी जन्मे या कोई भी व्यक्ति या चैतन्य महाप्रभु। यदि गृहस्थ जीवन अपने नियम का पालन करे, ऐसे थोड़े से मान लीजिए अगर पति पत्नी के
तो उनका पुत्र उत्पन्न करना ही बहुत बड़ा योग माना जाए। वे भले भजन न कर पाए लेकिन अगर पुत्र भक्त हो जाए तो माना जाएगा कि उन्होंने जो कुछ भी पुत्र का लालन पालन किया, उसे जन्म दिया, खिलाया पिलाया, वो भक्ति है। जैसे ध्रुव महाराज, ध्रुव महाराज भक्ति किए भगवान की और उनकी माँ उनके साथ बैकुंठ गई। ध्रुव महाराज चिंता कर रहे थे बैकुंठ जाते समय कि मेरी माँ रह गई इसी प्राकृत जगत में, तो भगवान के पार्षदों ने दिखाया कि महाराज वो तो आपसे आगे विमान पर जा रहे हैं। तब ध्रुव महाराज को संतोष हुआ। ठीक, तो ध्रुव जैसे भक्त को जन्म देने के कारण सुनीति भगवान के धाम में गई और बाद में प्रियव्रत महाराज, उतान पाद महाराज भी गए भगवान के धाम में। भागवत में लिखा गया द्वितीय स्कंध सातवें अध्याय। और बाद में बहुत पश्चाताप किए और ध्रुव का ही रात दिन चिंतन करते रहते थे। और उत्तम तो मर गया और राज्य भी उन्होंने ध्रुव को ही दिया और भगवान की भक्ति की। तो एक पुत्र के कारण माता पिता की यह उर्ध हो गति है। और भी कई कारण है, जैसे मान लीजिए गृहस्थ है, नहीं उससे बहुत भजन हो रहा है लेकिन भगवान की सेवा कर दिया, वैष्णव की सेवा कर दिया, दीन दुखी की सेवा किया, तो सेवा उसकी उन्नति कर देता है, उसको उठा देता है। कश्यप जी जो ये शब्द बोल रहे हैं जब योगो यजोगी नाम, हम लोग अयोगी हैं, हम लोग योगाभ्यास नहीं कर पाते हैं लेकिन यदि गृहस्थी के धर्मों का ही केवल पालन करें आसक्ति पूर्वक भी तो हम लोगों को योगाभ्यास का फल मिल जाता है। गृहस्थ आश्रम कैसा है इस विषय में कुछ उक्तियां हैं, मैं यहाँ पर पढ़ रहा हूँ। कैसा गृहस्थ आश्रम होना चाहिए? न्यायार्जित धन हस्तत्व ज्ञान निष्ठो तिथि प्रिय शास्त्रविद सत्यवादी च गृहस्थोपि विमुच्यते। न्याय से अर्जित धन हो किसी गृहस्थ के, किसी को दुख देकर नहीं, सता करके नहीं, नेक कमाई हो, न्यायार्जित धन हो और इसके साथ ही साथ तत्व ज्ञान में निष्ठा हो उस गृहस्थ की, मतलब भगवान के भक्ति में निष्ठा हो और अतिथि प्रिय, वह अतिथियों का स्वागत करने वाला हो, शास्त्रवेत्ता हो और सत्यवादी हो, तो वह गृहस्थ भी मुक्त हो जाता है। गृहस्थों की विमुच्यते, ये ऑफिस शब्द से लग रहा है कि गृहस्थ जल्दी मुक्त नहीं होते हैं लेकिन अगर ऐसा हो तो वे भी मुक्त हो जाएंगे। एक दूसरा कवि कहता है कि यदि रामा यदि च रमा, यदि घर में रामा है मतलब सुंदरी स्त्री है, पतिव्रता स्त्री है, यदि च रामा और यदि च रमा, यदि घर में रामा है और रमा भी है मतलब लक्ष्मी भी है, घर में सुंदरी पतिव्रता स्त्री है और खाने पीने भर पर्याप्त धन है, यदि च तनयो विनय भी गुणोपेता और पुत्र विनयी है, माता पिता का भक्त है, अनुगामी है, और तनय तनयोत्पत्ति और अपने पुत्र को भी पुत्र हो जाए, तो क्या स्वर्ग में इंद्र के नगर में इससे भी अधिक कुछ है क्या? अर्थात नहीं, सुरवर नगरे किमा अधिक्यम। यदि घर में सुंदरी पतिव्रता स्त्री है और लक्ष्मी है, धन है, पुत्र अनुगामी है और पुत्र को भी पुत्र हो गया है, तो क्या देवराज इंद्र के नगर में इससे कुछ और भी ज्यादा सुख है क्या? नहीं है। कहने का आशय है, साहित्यिक भाषा में कहा गया है कि ऐसा गृहस्थ धन है। एक दूसरे श्लोक में कहते हैं सानंदम सदनम सुता च सुधिय कांता न दुर्भाषिणी सन्मित्रम सुधनम सुजोषिति रति चाज्ञा पर सेवक आतिथ्यम हरिपूजनम प्रतिदिनम मृष्टान पानम गृहे साधो संगम उपासते ही सततम धन्यो गृहस्थाश्रम। एक कवि कहता है धन्य है गृहस्थ आश्रम। क्यों धन्य है? दिशानंदम सदनम, यदि घर सब प्रकार के सुख की सामग्री से युक्त है और सुताश्च सुधियः, जितने पुत्र हैं सब सुंदर बुद्धि वाले हैं, माता पिता के अनुगामी हैं, ईश्वर के भक्त हैं, कांता न दूरभाषी, और यदि अपनी पत्नी कठोर बोलने वाली न हो अर्थात मृदु वचन बोलने वाली हो, सब मित्रम मित्र अच्छे अच्छे हो, सुधनम धन बहुत अच्छा है, स्वजोषिति रहती और अपने ही पत्नी से केवल प्रीति हो, और आज्ञा परा सेवका और सेवक सब आज्ञा मानने वाले हैं, आतिथ्यम जहाँ अतिथियों का सत्कार होता है, हरि पूजनम प्रतिदिनम जिस घर में भगवान की प्रतिदिन पूजा होती है, और मृष्टान पानम गृह और घर में खाने पीने के लिए अच्छी सामग्रियां हैं, सुखद भोजन मिल रहा है, और साधु संग उपासते और वह गृहस्थ यदि साधु का संग कर रहा है तो ऐसा गृहस्थ आश्रम धन्य है, धन्यो ही धन्यो गृहस्थ आश्रम। ये सब गृहस्थ को चाहिए कि कर, बहुत ही सीखने की बात है। तो गृहस्थ आश्रम की यहाँ प्रशंसा कर रहे हैं कश्यप जी कि हम लोगों का योग यही है कि हम लोग घर के काम धंधा को करें ठीक से, जत्र योगो ये योगिना। फिर समाचार में और पूछते हैं तो ध्यान में लेते आएगा, पहले समाचार पूछे ब्राह्मणों का, धर्म का, लोक का, दूसरा समाचार पूछ रहे घर में सामान की कमी नहीं है ना, धर्म का पालन करने में कोई कष्ट नहीं है ना, और विषय भोग की वस्तुएं है ना, यह गृहस्थाश्रम हम योगियों हम अयोगियों के लिए योग का अवसर देता है। और एक और पूछ रहे हैं, क्या तुम्हारे घर पर आए हुए अतिथि बिना सत्कार प्राप्त किए चले गए क्या, यह भी एक दुख का बहुत का बड़ा कारण होता। पहले के लोग यदि अतिथि सत्कार नहीं कर पाते थे तो वो धूमिल हो जाते, उनका चेहरा मलिन हो जाता, चाहे जैसे घर पर सामान नहीं रहता था उस कारण से न कर पाए तो कोई बात नहीं, लेकिन सब सुविधा होने पर भी किसी अतिथि का स्वागत नहीं किए, कोई भूखा दुखा रास्ता जा रहा है थक करके आ गया बिना डेट डाले, उसको अतिथि कहते हैं, अतिथि जिसके आने की कोई तिथि निश्चित न हो, और जिसके आने की तिथि निश्चित होती है उसको अभ्यागत कहते हैं। अभ्यागत की अपेक्षा अतिथि की सेवा का ज्यादा महत्व है। तो पहले के अतिथि भी होते थे कि थके माने गए किसी गृहस्थ के यहाँ खाए और चल दिए, और तो आजकल कोई ऐसा खिलाने लगे तो वहीं सात दिन दे रहता है, तो आप पहले अतिथि ऐसे नहीं होते थे, गृहस्थों के घर पर में रुक जाते थे, पहले होटल मोटल भी नहीं होते थे, तो अतिथि का सत्कार करने के लिए लोग प्रतीक्षा करते थे। तो प्रिय कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि तुम्हारे घर पर अतिथि आए और तुमने उनका स्वागत नहीं किया, गृहस्थ अपूजिता जाता घर पर आए थे और बिना पूजा किए बिना सत्कार किए वे चले गए, ऐसा संभव है कि तुमने तिरस्कार किया होगा, कुटुम्बा शक्तया तया, जिस स्त्री की कुटुम्ब में आसक्ति होती है केवल बच्चों के पालन में घर के काम धंधा करने में, वह अतिथि की सेवा नहीं कर सकती, नहीं करेगी। कश्यप जी से मानव अतिथि पूछती है कैसे आप ये संभावना करते हैं कि मैं अतिथि की सेवा नहीं करूंगी, तो कहते हैं कि स्त्री में संभावना रहती है कुटुम्बा शक्तया, परिवार में इतनी आसक्ति होती है वो सोचती है कि 10-20 रुपए का सामान लग जाएगा, ये बेकार है अतिथि को खिलाना पिलाना, और हमारे समय पर समय भी नहीं, कुटुंब की आसक्ति से अतिथि का स्वागत नहीं होता। तो क्या ऐसा तुमने किया, क्या कोई अतिथि तुम्हारे घर पर आया तो तुमने प्रत्युत्थान नहीं किया, क्या उठ करके उसका स्वागत नहीं किया। फिर कहते हैं कि जिस गृहस्थ के यहाँ अतिथि का सत्कार नहीं होता है उसका जीवन व्यर्थ है, अनर्थक है, वास्तव में ये कश्लोक में बोल रहे हैं, गृहेषु जे सतिथयो नार्चिता सलिलैरपि यदि निर्यान्ति तेनो नम फेरु राज गृहोपमः, जिन घरों में जिन गृहस्थों के यहाँ अतिथियों का स्वागत नहीं होता है वे घर श्रीगाल राज के घर के समान है, गीदड़ राज के घर के समान है। आप लोगों ने सियार का घर देखा है? हम लोग तो गांव के हैं इसलिए खूब देखे हैं चारों तरफ। केवल शहर में रहने वाले सियार भी नहीं देखे होंगे, सियार का घर कहां से देखे। तो संस्कृत में श्रीगाल या फेरू कहते हैं। तो वे घर बनाते हैं सियार, बहुत चौड़ा दिल बनाते हैं और उसमें सियार सियारिंग रहते हैं। तो उसमें कहीं पर मांस का टुकड़ा ला करके रखते हैं, खा करके किसी बछड़े का पूछ लाते हैं या कहीं किसी पशु का मरा हुआ मांस खाते हैं और आकर के उसी में रहते हैं। और कभी कभी बोलते हैं रात में एकांत में हुआ हुआ करते हैं, बिल से निकल कर बोलते हैं। तो जिन घरों में अतिथियों की सेवा नहीं होती है वे घर सियार के घर के समान है। सियार साधारण सियार नहीं, श्रीगाल राज, हेरू राज, जो सियारों में सबसे श्रेष्ठ है वैसे सियार का घर है। इसका मतलब है कि वह गृहस्थ भी सियार हुआ। जो सियार का घर है तो उसमें रहने वाला क्या आदमी रहेगा? इतना हीन कह रहे हैं कश्यप जी। इसलिए अतिथियों का स्वागत करना सीखना चाहिए। जब माता अदिति पूछ सकते हैं कि मान लीजिए घर में भोजन आसन आदि का अभाव हो या भोजन का अभाव है अन्न नहीं है, तो इस पर कश्यप जी कहते हैं सलिले ही अपने, अरे घर में भोजन नहीं है, बहुत श्रेष्ठ पलंग नहीं है, तो क्या जल भी नहीं है क्या? जिन घरों में जल से भी अतिथियों का स्वागत नहीं होता है वे घर फेरू राज के घर के समान। जल से कौन नहीं स्वागत करेगा? जल, सुंदर वचन और लीपा पोता हुआ आसन घर। अगर घर में चटाई भी नहीं है, कारपेट नहीं है, तो कम से कम धो धा करके स्वच्छ किया हुआ जमीन तो कम से कम कहना चाहिए बैठने के लिए, आइए आप रास्ता चलकर थक गए हैं, आराम कीजिए, एक गिलास पानी पीजिए, क्या करें हमारे घर में कुछ नहीं है, बहुत अफसोस हो रहा है। मतलब जिसके पास न हो उसकी बात कर रहे हैं। और यदि घर में है तब तो जल से फल से और तरह से स्वागत करना चाहिए। गृहस्थों के जो धर्म लिखे गए शास्त्रों में तो उसमें अतिथि सेवा एक प्रमुख धर्म माना गया है। इसीलिए कश्यप जी अपनी पत्नी से पूछ रहे हैं कि तुम्हारे घर पर आकर के कोई अतिथि बिना सत्कार के तो नहीं चला गया और इस कारण से तुम निस्तेज हो गई, क्या यह कारण है? क्या इस अफसोस में पड़ी है? ये समझना चाहिए हम लोगों को, मनुष्य रहना चाहिए सियार में। गृहस्थों को चाहिए कि वे इस तरह से रहे। साधु के भी आश्रम में जाने पर, विरक्त के आश्रम में भी कोई जाता है तो वहां धर्म लिखा गया है कि वो मधुकरी लावे तो मधुकरी में से वो बांट दे और थोड़ा खा ले, ऐसा लिखा गया। गृहस्थों के लिए तो कहना ही नहीं, उनका तो किचन चलता है, पकाते हैं, तो इसलिए उसमें देना जरूरी है। अगर नहीं देते हैं तो सियार से उपमा दी जाती है और छोटे छोटे बच्चे वो सियार के बच्चे हैं। अतिथि की सेवा नहीं करेंगे और सब उड़ाएंगे इधर खा पी करके। एक देवताओं के पिताजी बोल रहे हैं ये बात। और फिर पूछते हैं अप्यग्नयस्तु बेलायाम न होता हविषा सती, हे पतिव्रते, क्या हवन की बेला आने पर भी तुमने हवन नहीं किया क्या? इससे असिद्ध हुआ कि स्त्रियों का भी कर्तव्य है हवन करना। हवन का अर्थ होता है देवताओं को भोजन देना। जो देवता हमको प्रकाश देते हैं, हवा देते हैं, पानी देते हैं, यहाँ पर घी से और उचित मंत्र से जब हम आहुति देते हैं तो देवताओं को भोजन के रूप में प्राप्त होता है। मनुष्यों का किया हुआ यज्ञ देवताओं का वेतन माना गया है, ये देवताओं का यज्ञ भाग है, वही उनकी जीविका है। तो प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य होता है कि वह हवन करे, होम करे, और समय नहीं तो कम से कम बेला आने पर जरूर करे। तो कहते हैं कि क्या ऐसा हुआ कि बेला आने पर भी, बेलायाम अपि, बेला उचित अवसर आने पर भी अग्नियों में तुमने हवन नहीं किया क्या? तयो विघ्न धिया भद्र प्रोषित मई करे चित। वो पूछती है कि पति देव आप कैसे ऐसे मान लिए कि मैं इस तरह से धर्म का पालन नहीं कर सकी, कैसे मैं हवन नहीं कर सकती, आप कैसे मान रहे हैं? तो कहते हैं संभव है क्योंकि मई प्रोषित, मैं घर से बाहर था और तुम अकेले घर पर रहती थी, तो हो सकता है तुम्हारा चित्त उद्विग्न रहा हो, भयभीत रहा हो, चिंता में रहती हो, और इस कारण से तुम यज्ञ नहीं कर पाई, हवन नहीं कर पाई, ये संभव है। तो हवन अवश्य करने चाहिए, देवताओं को भोजन दिया जाता है। दो मुख हैं भगवान के, आगे जैसे कश्यप जी कहते हैं, जग पूजया काम दुघान जाति लोकान गृहान्वित ब्राह्मणोग्निश्च वै विष्णु सर्व देवात्मनो मुखम। अग्नियों में आहुति देने से व्यक्ति ऐसे लोगों को प्राप्त करता है जहां उसके सारे मनोरथ पूरे हो जाते हैं। जो जो इच्छा करता है उस इच्छा को पूरा करने वाले भगवान ने लोक बनाया है, जिसे स्वर्ग लोक कहते हैं, और केवल उस स्थान पर रहने से ही सब कुछ मिलता है। मन में जी इच्छा करता है कि मुझको यह मिले, वह वस्तु हाजिर हो जाती है। मार्केटिंग नहीं करना पड़ता स्वर्ग में, अपने आप सब कुछ उपस्थित हो जाता है। वहां के वृक्ष देते हैं, वहां के घर चिंतामणि के बने होते हैं, मनोरथ करते ही आ जाते हैं। कोई देवता है मनोरथ करता है कि हमको इस समय रसगुल्ला चाहिए, तो अपने आप उपस्थित हो जाते हैं। यदि वे लोग रसगुल्ला नहीं चाहेंगे तो मनुष्य इसको बहुत अच्छा मानता है, देवता लोग ये सब चीज नहीं खाते। काम दुघान कहते हैं, जो हमारे कामनाओं को पूरा कर दो, काम दुग है, ऐसे लोग मिलते हैं हवन करने से। युग के अनुसार और स्थान के अनुसार हमें इस हवन का अर्थ समझना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी ने बार बार समझाया है, पर इसके साथ यह जरूरी है कि कुछ हवन किया जाए अग्नि में। अब कुछ ब्राह्मणों में हवन किया जाता है, प्रसाद बना बना कर, यही हवन का एक तरीका है, यही भगवान खाते हैं। ये ब्राह्मण और अग्नि ये विष्णु के मुख हैं, तो भगवान की आराधना के लिए इस तरह हवन करना चाहिए। तो अति ने पूछा कि केवल भगवान की आराधना की जाएगी तब तो देवताओं की आराधना छूट जाएगी। कश्यप जी कहते हैं सर्व देवात्मन, भगवान विष्णु सर्व देव स्वरूप हैं, यदि उनकी पूजा हो गई तो सब देवताओं की पूजा हो जाएगी, सारे देवता उनके भीतर ही रहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई पेट को अन्न दे रहा है तो कोई कहे कि पेट को तो दिया, आंख को तो दिया नहीं। पेट को देने का मतलब है कि वो भोजन आंख में पहुंच जाएगा। पेट अंगी है और आंख अंग है, ऐसा नहीं कहा जा सकता है किसी को खिला करके कहेंगे अरे आपके आंख को कुछ नहीं दिया, उसमें भी एक आध गुलाब जामुन डाल देता हूं, ऐसा नहीं कहा। या कान में कुछ डाल दे, सिर पर बांध दे, पैर में रोटी बांध दीजिए, ये सब भोक्ता नहीं है, भोक्ता है पेट। इसी तरह वास्तव में भजन करने चाहिए भगवान का, भगवान की आराधना करने पर, भगवान को कुछ देने पर देवताओं को, अन्य जीवों को, सबको मिल जाता है। यह सिद्धांत बता रहे हैं देवताओं के पिता कश्यप जी, विष्णु सर्व देवात्मा है। अंत में पूछते हैं जिसके लिए वो दुखी थी वास्तव में, ये सब किसी चीज की कमी नहीं थी, उसने कभी अतिथियों का तिरस्कार नहीं किया था, कभी उसके घर में पैसे की कमी नहीं थी, कुछ नहीं था। ऐसा नहीं था कि बलि महाराज ले लिए स्वर्ग तो अब अदिति का भी धाम ले लेंगे, ऐसा नहीं किए, सब ठीक था। कश्यप जी अंत में पूछते हैं, अपि सर्वे कुशलिनस्तव पुत्रा मनस्विनी, हे मनस्विनी प्रिय, अब तक तुम सदा धैर्य धारण करती थी, लेकिन आज देख रहा हूं कि तुम्हारा धैर्य चला गया है। तो हे मनस्विनी, हे धैर्यशालिनी, तुम्हारे सभी पुत्र कुशल से है ना? सर्वे पुत्र कुशलिना, सभी कुशल से है ना? जब ये पूछे होंगे कश्यप जी तो भक्त से कलेजा किया होगा उसका, पुत्र कुशल से कहा है, इसी के कारण तो बेचारी रो रही। और सर्वे पुत्र, और ये पूछने के का ढंग देखिए, कहते हैं तब पुत्र, तुम्हारे सभी पुत्र कुशल से है ना, ये नहीं कह रहे हैं हमारे पुत्र, क्योंकि इनके पुत्र और भी पत्नियों से हैं। इसीलिए सब पूछने का ढंग देखिए, तुम्हारे सभी पुत्र कुशल से है ना? तव पुत्र, और पुत्रों का नहीं पूछ रहे हैं। अब दूसरी पत्नी के पास जाएंगे तो उससे पूछेंगे, तव पुत्र कुशलिना किम, तुम्हारे पुत्र कुशल से है ना? अद्भुत व्यक्तित्व है कश्यप जी, कैसे निर्वाह कर लेते हैं इतनी स्त्रियों के साथ, वास्तव में महान है। पूछने पर ऐसे पूछे कि ये रंज नहीं हो पाएगी, अगर ये पूछते कि हमारे पुत्र कैसे हैं, तो इनके पुत्रों की तो कोई संख्या ही नहीं, लिमिट ही नहीं है। अब तो उस विषय में दीति के भी पुत्र का कुशल पूछते या उसके वंश के लोगों का कुशल पूछते, बहुत प्रवीण है पूछने में। ऐसी बात पूछ रहे हैं कि इसको दुख न लगे, इसलिए तव पुत्र कर, मम पुत्र नहीं। तो पिता पूछ रहा है, मतलब पति पूछ रहा है अपने पत्नी से, तुम्हारे सभी पुत्र कुशल से है ना? क्योंकि ऐसा कोई पिता नहीं कहेगा, वो पूछेगा कि पुत्र कुशल से है ना सब, इतना कहेगा। और नहीं मम पाव लगाना पड़ेगा तो पाव नहीं लगाएगा, अपना नाम लगाएगा। आजकल तो झगड़ा हो जाता है पुत्र के लिए चाहे पुत्री के लिए, डाइवोर्स होता है तो पति कहता है मेरा पुत्र रहेगा, पत्नी कहती है कि मेरा रहेगा, झगड़ा होता है, कहते हैं कि न तव पुत्र मम पुत्र। वास्तव में दोनों के पुत्र पुत्री हैं, पर यहां व्यवहार में बहुत सतर्कता से बोलना पड़ता है, भले अपनी पत्नी है तो क्या, लेकिन उससे भी बोलने में सावधानी बरतनी चाहिए। तो कश्यप जी तो परम विद्वान है, पूछते हैं तुम्हारे सभी पुत्र कुशल से है ना, और सर्वे पुत्र एक दो नहीं, क्यों ऐसा पूछ रहे हैं? मान लीजिए उसके मन से आवाज निकले नहीं उसे, तो कहते हैं लक्ष्य अस्वस्थम आत्मानं भवत्या लक्षण रहा, भवत्या आत्मानं, तुम्हारे मन को आत्मा को अस्वस्थम लक्ष्य, तुम्हारे मन को मैं अस्वस्थ देख रहा हूं, प्रकृति में नहीं है, स्वभाव में नहीं है, दुखी है तुम्हारा मन। कैसे समझ रहे हैं? लक्षण, लक्षण से मतलब मुख मलान आदि भी, तुम्हारा जो मुख कुम्हला गया है इसके द्वारा, और आश्रम में कोई आनंद नहीं है, उत्सव नहीं है, इन सब से मैं समझ रहा हूं कि तुम्हारा हृदय दुखी है। तो बताओ प्रिय, तुमको क्या दुख है? और ये सब जो वितर्क किए, क्या इस कारण से दुखी हो, क्या इस कारण से दुखी हो, क्या इस कारण से दुखी हो, इस तरह इसको विकल्प वैकल्पिक प्रश्न करते हैं, बहुत बहुत तरह की आशंका करना, बहुत बहुत तरह से पूछना। लक्षण से मैं देख रहा हूं तुम्हारा मुख मलिन है, मुरझा गया है, दुबली हो गई हो, इसलिए मैं अनुभव करता हूं तुम्हारा मन अस्वस्थ है, दुखी। इतना सुनने के बाद तब माता अदिति उत्तर देती, कोई कोई ऐसा सोच सकते हैं कि वामन भगवान की कथा कब आएगी, लेकिन वामन भगवान के माता पिता की कथा चल रही है। जैसे भगवान के अवतार के पहले आप वसुदेव और देवकी की कथा सुनते हैं, देवकी का वध करना चाहता है कौन से इस तरह, तो उसी तरह से ये उसी की प्रस्तावना है। वामन अवतार को ही प्रस्तुत करने के लिए प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है। माता अदिति अपने पति के वैकल्पिक प्रश्नों को सुनकर उत्तर देती है। अदिति रिवाज भद्रम द्विजगवाम ब्रह्मम धर्मस्यास्य जनस्य च, हे ब्राह्मण यद्यपि आप सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं, फिर भी आपने जब प्रश्न किया है तो आपका आदर करते हुए मैं उत्तर देती हूं। हे ब्राह्मण, सबका कुशल है, ब्राह्मणों का कुशल है, गौओं का कुशल है, किसी पर कोई संकट नहीं है। धर्मस्यास्य जनस्य च, धर्म का पालन भी ठीक से हो रहा है, कोई बाधा नहीं है, मेरा और समस्त जनता का भी कुशल है। और आपने प्रश्न किया कि घर गृहस्थी में धन और वस्तु ये सब ठीक से है, तो सब ठीक है, किसी चीज की कमी नहीं। यह गृहस्थ आश्रम त्रिवर्ग का आधार है, धन धर्म और काम इंद्रिय तृप्ति के लिए समान, ये सब घर गृहस्थी में संभव है। तो हमारी घर गृहस्थी बिल्कुल ठीक है, पैसे की कमी नहीं है, खाने की कमी नहीं है, और धर्म पालन में भी हमको कोई कष्ट नहीं है, किसी जनता को किसी एक व्यक्ति को भी कोई कष्ट नहीं है। इस तरह से उत्तर दे रहे हैं, बिल्कुल सब पे बोल रही, कोई कमी नहीं। सर्वम त्रिवर्गस्य परम क्षेत्रम गृह मेधिन गृहाय, और कश्यप जी के लिए संबोधन कर रही है गृह मेधिन। जब आपकी मेधा आपका ध्यान गृहस्थी में रहेगा तो किसकी कमी रहेगी, कोई कमी नहीं है, सब कुछ ठीक है। और आपने अग्नि और अतिथि की बात किया तो अग्नयो अतिथयो भृत्या भिक्षवो ये चलित स्व सर्वम भगवतो ब्रह्म अनुध्याना नरिष्यति, हे ब्राह्मण, हे हमारे पति देव, हमने कभी भी ऐसा समय नहीं आने दिया जब मैंने हवन नहीं किया। बेला आने पर मैं ठीक तरह से हवन की हूँ, अग्नियों का आदर की हूँ
और भगवान का आदर की हूँ,
अतिथियों का स्वागत किया है, हमने कभी तिरस्कार नहीं किया, और भृत्य हमारे घर के जो भृत्य हैं सेवक हैं उनका भी आदर किया, भिक्षव जो भिक्षुक हैं दीनहीन चाहे सन्यासी जो भी भिक्षुकों का मैंने बहुत अच्छा से आदर किया, और लिप्सव कुछ लोग आशा रखते हैं गृहस्थों से कि हमको कुछ देगा हमको देगा, तो जिनकी भी इच्छा रहती है इस तरह से अपने संबंधियों की और सबकी, तो मैंने उनकी मांग पूरी की है, कभी ऐसा नहीं आया कि कोई भिखमंगा हमारे द्वार से खाली चला गया हो या कोई व्यक्ति आकांक्षा लेकर के आया हो हमसे और मैंने कह दिया हो कि नहीं दूंगी, ऐसा मैंने कभी नहीं किया। क्यों ऐसा नहीं किया कि मैं सदा आपका ध्यान रखती थी, आपका ध्यान रखती थी कि यदि मैं गलती करती हूं तो मेरे पति के नाम पर कलंक लगेगा, तो अपने पति के जस को आपके जस को सुरक्षित रखने के लिए मैंने कभी भी प्रमाद नहीं किया। कितना सुंदर वाक स्त्री बोल रही है, एक स्त्री के आचरण से एक स्त्री के व्यवहार से धर्म से पति की उन्नति होती है। और कोई भी व्यक्ति मान लीजिए किसी के घर पर सम्मान पा करके गया तो उस स्त्री का प्रचार नहीं करेगा, उसके पति का प्रचार करेगा कि उसके घर पर गया था तो इतना आदर हुआ, बहुत सज्जन लोग हैं ये। माता अदिति जी कह रही हैं कि सर्वम भगवतो ब्रह्मन अनुध्यान नदीश्य अनुध्यान, मुझे हमेशा आपका स्मरण रहता था, आपकी शिक्षा आपकी महिमा, और आपका जब मैं स्मरण करती रहती थी तो मैं धर्म पालन में या और किसी के सत्कार में मैंने कभी कमी नहीं आने दिया, सब कुछ ठीक किया है। धर्म पालन या और जो कर्तव्य पालन होता है वह संबल देखना चाहिए, जैसे सोचना चाहिए किसी को कि मैं इतने महान संस्था का व्यक्ति हूं तो हमारे आचरण से इस काम बदनाम नहीं होना चाहिए, ये सोचने की बात है। जब इतने महान पति के विषय में चिंतन करते और स्त्री कह रही कि मैं आपका ध्यान रख रही और आपके चिंतन के कारण मैंने कभी कोई कमी नहीं आने दिया, तो सबका किसी न किसी से संबंध है, अपने पिता हैं माँ है उन पर कोई कलंक ना दे, उनका बेटा ऐसा हो गया, ये गुरु हैं, गुरु के नाम पर कोई कलंक न आवे शिष्य के कारण या पत्नी के कारण पति पर, ये सब बातें सीखने की है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात पत्नी बोल रही है, मैं आपका ध्यान रखती हूँ, आपकी शिक्षा का और आपके बड़प्पन का, इसलिए मुझसे कोई कमी नहीं है। और जहाँ तक आप पूछ रहे हैं काम की बात, अभिलाषा की, कि तुमको क्या अभिलाषा है, तो पतिदेव आप जैसा प्रजाध्यक्ष, आप जैसा पति जिस स्त्री को धर्म का उपदेश करता रहता है, तो ऐसी कौन सी कामना है जो पूरी नहीं हो सकती है। कोल में भगवान कामो न संपर्दित मानस जस्या भवान प्रजाध्यक्ष एवं धर्म प्रभाषक। आप जैसा पति जिस स्त्री को मिला हो, तो उस स्त्री के मन में मानस काम कौन ऐसी कामना उठेगी जो पूरी नहीं हो सकती। आप महान हैं और आपकी आज्ञा होती रहती है, आप हमको सिखाते रहते हैं कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ये करना चाहिए। धर्मान प्रभाषित है, गृहस्थ के लिए उचित कर्तव्य की शिक्षा आप देते रहते हैं। इससे भी शिक्षा लेनी चाहिए कि प्रत्येक गृहस्थ का यह कर्तव्य है कि वो अपनी पत्नी का गुरु बने और उसको सिखाओ। और वास्तव में शास्त्र कहता है कि पत्नी के लिए पति ही गुरु है, उसे सिखाना चाहिए। धर्मन प्रभाषक यहाँ स्पष्ट है, और किसी के लिए अदिति ने नहीं कहा कि हमको इसने धर्म सिखाया, उसने किया, ये किया। यदि आप हमको सिखाए हैं आज तक, अभी भी शिक्षा दे रहे हैं, समाचार पूछने में भी आप शिक्षा ही दे रहे हैं, तो आप जैसे महान पति को पाकर तो मेरी कौन सी अभिलाषा पूरी नहीं हो सकती है। यह अभी बोलने में बहुत दिलसी है, अब इसको मांगना है, इसलिए अब प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं। कौन ऐसी अभिलाषा है जो मेरी पूरी नहीं हो सकती। सब जो कितना भी इंटीमेट संबंध हो, लेकिन फिर भी बोलने में राजनीति चलती रहती है। कष्ट जिसे और कुछ इसको मांगना है, अपने पुत्रों का दुख निवेदन करना है, धीरे 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 निकट आ रही। फिर कहती है तवैव मारीच मनः शरीर जहा प्रजा इमाह सत्व रजस्तम जुषः समो भवांस्ता ससुरा दिशु प्रभो तथापि भक्तं भजते महेश्वरः। हे मारीच, मारीच का अर्थ है हे मरीची के पुत्र। कहने का अर्थ है कि आप अपने पिता के क्रम से भी महान हैं। आपके पिता मरीचि जी हैं, जो मरीचि जी ब्रह्मा जी के डायरेक्ट पुत्र हैं। तो मरीचि के पुत्र को मारीच कहें। वंश परंपरा आपकी बहुत महान रही है, आप सब तक जन्म से भी महान हैं। और इस जगत में जितने भी जीव हैं, सत्व रजस तमो जुषः, कोई सत्व गुणी, कोई रजोगुणी, कोई तमोगुणी, जो भी जीव है तवई और मन शरीर जा, वो आपसे ही जन्म लिए हैं, मतलब आप ही सबके पिता हैं। किसी किसी का जन्म आपके संकल्प से हुआ है, मन से, केवल आपने संकल्प किया पुत्र हो गए। और किसी किसी का जन्म आपके शरीर से हुआ है, मन शरीर जा, किंचित मनसो जाता है, किंचित शरीर जाता। कुछ लोग शरीर से जन्म लिए हैं, मन से जन्म लिए हैं, लेकिन सभी आपकी संतान है और आप सबके प्रति सम। विषम बनाना चाहती है उनको, अपनी मांग पूरी करवा दी है। पाली कहते हैं कि आप सबके पिता हैं, सब आपकी संतान है, इसलिए सब पर आपकी समान दृष्टि है, इसमें भेद नहीं करते हैं। यहां तक कि असुरा दिशु, चाहे असुर हो चाहे सुर हो, देवता हो चाहे दानव हो, आपकी तो सब पर समान दृष्टि है। लेकिन यह कहने से तो अग्नि का काम चलेगा नहीं, अगर उनको सम बना रही है तो अपने लिए खतरा पैदा कर रही है। लेकिन यह कह करके क्या अंत में कहती है, तथापि भक्तम भजते महेश्वर। आप सम हैं लेकिन भगवान भी सम है, समूहम सर्व होते से भगवान सब सबके प्रति सम है, विष्णु कृष्ण, लेकिन वे भी अपने भक्त से प्रेम करते, भक्त का पक्षपात करते। तो आपको भी भगवान का ही अनुगमन करना चाहिए, अनुसरण करना चाहिए। तो आपको लेकिन आपकी सभी संतान है देवता दानव सभी, लेकिन जैसे भगवान विष्णु अपने भक्तों का पक्षपात करते हैं उनसे प्रेम करते हैं, तो आपको भी चाहिए कि अपने शरणागत से अपने भक्त से प्रेम कीजिए। मैं आपका भक्त हूँ, ये कहने का आशय है कि पतिदेव आप मिला करके देख लीजिए, आपकी बहुत सी पत्नियां हैं लेकिन 100% मैं आपकी शरणागत हूं। मैं यह नहीं कहती हूं कि मैं सबसे श्रेष्ठ हूं, लेकिन मैं आपकी शरण हूं। अब और प्रकाशित करने जा रहे हैं, भाई क्या इच्छा है बाद में अब कहे, यह है कहने का ढंग। आप सबके प्रति सम है, सभी आपकी संतान है, तो जब सभी इनकी संतान है तो बलि राजा हो गया है तो क्या हटाना है उसको, कोई बात नहीं। इन कहते तथापि भक्तम भजते महेश्वर, महाईश्वर श्री विष्णु वे भी भक्त का पक्षपात करते हैं, भक्तों का भजन करते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, तो आप भगवान से तो बड़े हो नहीं गए, आप तो भगवान के भक्त हैं, इसलिए भगवान जैसा करते हैं वैसा आप भी कीजिए, व्यवहार कीजिए ऐसा किसान। कहने का मतलब है कि इंद्र को ही राजा बनाएंगे, इसके हृदय का भाव ये था, मैं आपका भक्त हूं, मैंने आपकी सेवा की है, इसलिए हमारे बेटा को स्वर्ग का राजा होना चाहिए, ये इसके भूमिका का फल है, इस तरह से भूमिका बना रही है। मैं दोष दृष्टि से नहीं बोल रहा हूं माता अदिति के प्रति, लेकिन इसकी बोलने की कुशलता पर विचार करता हूं किस तरह से बोल रही है, और कश्यप जी बिल्कुल तैयार हो जाते हैं। तस्मादीश भजंत्या में श्रेयश्चिन्तय सुव्रत, हे सुव्रत आप भगवत भजन के व्रतों का पालन किए हैं, आप भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, इसलिए मेरी इच्छा पूरी करने में आप समर्थ हैं। आप ऐसा नहीं कह सकते कि हमारी इच्छा पूरी आप नहीं कर सकते, तो हमारे श्रेय के लिए, हमारे हित के लिए, हमारे कल्याण के लिए आप सोचिए। आप देख ही रहे मैं रो रही हूं, मेरा शरीर दुबला हो गया है, ये हो गया है, मैं बहुत दुख में हूं, तो आप हमारे कल्याण पर विचार कीजिए। चिंतय मैं श्रेयस चिंतय, विचार कीजिए, क्या विचार करें, क्या करना है हमें, तो अब बिल्कुल खोलकर कहते हैं हृतश्रिय, हमारा धाम छीन लिया गया है, हमारी स्त्री छीन ली गई है, हित स्थान हमारे स्थान छीन लिए गए, हमारे तो हमारे पुत्रों के कहने का आशय है, पुत्रों से अपना अभेद करके करे, एकाएक पुत्र नाम नहीं रख रही है कि वो चौक जाएंगे, कश्यप जी कहीं ये न कह दे कि अरे बस 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 छोड़, इसलिए अपना दुख बता रहे हैं। हृतश्रिय हमारा धाम सारा छीन लिया गया, जो वकालत कर रही है अपने पुत्रों का, जब कोर्ट में वकील लोग बोलते हैं तो जिस पार्टी को होते हैं उससे मैं कहते हैं, वे वकील की तरह नहीं बोलते हैं, पार्टी ही हो जाते हैं, है ना, तो मैंने ये नहीं किया, मैंने ये किया, मैंने ये नहीं किया, ये किया, वही आदमी बन जाते हैं। यहां पर माता अदिति अपने पुत्रों की तरफ से बोल रही है कि हमारे धन छीन लिए गए हैं और स्थान भी, घर द्वार पद सब कुछ छीन लिया गया है, किसके द्वारा, सपथ में हमारे शत्रुओं द्वारा, हमारे शत्रुओं ने हमारा सब कुछ छीन लिया है, पाही न प्रभो त्राहि, हमारी रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा की, इतना कह करके चरण पकड़ ली, हमारा सब कुछ छीन लिया गया है शत्रुओं द्वारा, आप हमारी रक्षा कीजिए, पाही न प्रभो, आप समर्थ हैं सब तरह से हमारी रक्षा कीजिए। तो कश्यप जी अपनी पत्नी की इस प्रकट मांग को समझ रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि और जरा स्पष्ट करो क्या हो गया है, तो कहती है परय विभाषिता सा हम मग्ना व्यसन सागरे, परय शत्रुओं के द्वारा मैं घर से निकाल दी गई है, घर से तात्पर्य मेरा स्वर्ग छीन लिया गया है, मेरे बच्चों को भगा दिया गया है,
मैं दुख के समुद्र में पड़ी हूँ। अभी पुत्र नहीं कह रही, अपने लिए कह रही है। अहम व्यसन सागर मग्ना, मैं दुख के समुद्र में डूबी हूँ। आप ऐसा विचार कीजिए, साधारण दुख मुझको नहीं है कि तैर करके पार हो जाऊंगी, दुख के समुद्र में डाली गई, अपार दुख है। और शत्रुओं के द्वारा हमारा घर छुड़ाया गया है, धन लूटा गया है। ऐश्वर्यम श्री जसस्थानम हृदानि प्रबलय मम, हमारा ऐश्वर्य छीन लिया गया, मतलब नियमन पावर, कंट्रोलिंग पावर, धन जस और पद भी सब छीन लिया गया है शत्रुओं द्वारा। हमारा कह रहे पुत्रों के अभिप्राय से बहुवचन, तो आप इस पर विचार कीजिए। कश्यप जी कहते हैं इस पर विचार करने का मतलब तुम्हारी किस तरह से रक्षा करूं, तुम कहती हो मेरी रक्षा कीजिए रक्षा कीजिए। तो बेचारी चरण पकड़ करके कहती है, जथा तानि पुनः साधो प्रपद्ये रंग मम आत्मजा, मेरे देह से जन्मे हुए मेरे पुत्र जिस उपाय से पहले की तरह पुनः स्वर्ग पा ले, वो आप उपाय बताइए और कीजिए, हमारे पुत्र पहले की तरह स्वर्ग का राजा हो जाए, यही हमारी इच्छा है। और आपका मैं भक्त हूँ, आप समर्थ हैं, ये नहीं कह सकते कि मैं नहीं कर सकता, क्योंकि आप प्रभु हैं। और इस जगत में हमारा कल्याण करने वाले जितने लोग हैं उनमें आप सर्वश्रेष्ठ, कल्याणकृत तम, हमारा हित करने वाले जितने लोग हैं उनमें सबसे श्रेष्ठ आप, क्योंकि आप हमारे पति हैं। और पति ही केवल नहीं है, वास्तव में आप सर्व समर्थ हैं, आपके पास तपोधन है, तपस्या का धन है, भगवान की भक्ति है, योग शक्ति है, आप सब कुछ करने में समर्थ हैं। इसलिए हमारे पुत्रों को मम आत्मजा, मेरे पुत्रों को आप स्वर्ग का राजा बनाए, इस तरह की प्रार्थना रखी गई। अंत में उसने इस तरह से खोल दिया, तथा विधेहि कल्याणम धिया कल्याण कृतम, हमारा कल्याण कीजिए। और हमारा कल्याण इसी में है कि हमारे पुत्र स्वर्ग का राजा बने, सीधी सीधी बात है, कोई छिपा करके बात नहीं। इसका अर्थ है कि दीपी के संतान को स्वर्ग से हटाना पड़ेगा, तो अपने ही संतान को, अपने ही पुत्रों को ये हटाएंगे, तब न इसके पुत्र को बनाएंगे। तो ये है अदिति का हृदय, इतना दुराग्रह मन। जैसे धृतराष्ट्र महाराज पूछते हैं धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युद्ध सब माम का पांडवाश्चैव किम कुर्वत संवे, मेरे पुत्रों ने क्या किया और पांडु के पुत्रों ने, कितना भेद कर रहे हैं। यही संसार है वास्तव में, मेरा है और तुम्हारा है, मेरा बेटा राजा होना चाहिए दूसरे का नहीं। अरे कोई राजा होगा किसी न किसी का तो बेटा ही है ना, है कि नहीं? सभी माता पिता यही चाहे, बस मेरा पुत्र राजा हो, और दूसरा जो है वो बिना पुत्र हुए राजा हो गया है, किसी न किसी का पुत्र है। तो मन में याद रख, कश्यप जी जब इस प्रकट प्रस्ताव को सुने तो वे आश्चर्यचकित हो गए, स्मयन शब्द, स्मयन का आदमी विस्मय हो गया, इतना ज्ञान हो सकता है, इतनी बड़ी महिला के हृदय में अभी ये मेरा तेरा रह गया, ये तो ऊपर थे, ये तो किसी के प्रति पक्षपाती नहीं थे, मेरा बेटा होना चाहिए और अपने बेटों के काम इतना रो रहे थे। तो ये कहते हैं श्री सुखदेव गोस्वामी यहाँ पर बोल रहे हैं कि एवं अभ्यर्थितो दित्या कस्ता मास्मयन निवा कह कह का कश्यप जी, यह जब प्रार्थना की गई कश्यप जी से तो कश्यप जी थोड़ा मुस्कुराने लगे और विस्मित हो गए, उसके दुख को सुनकर वे दुखी नहीं हुए, अथवा भीतर से दुखी हुए होंगे, बाहर से उसको सांत्वना देने के लिए खुद दुखी नहीं हुए, नहीं वो रो रही है और वो भी लगते रो रहे, तो क्या उपाय करते। ऐसा वो करेंगे नहीं, ये महान पुरुष है। तो सबसे पहले उनके मुख से निकला अदिति के प्रति अहो माया बलम विष्णु स्नेह पद धनिगम जगत। ओहो भगवान की माया कितनी बलवान है, सारे जीव स्नेह बंधन में बंधे हैं, स्नेह की डोरी से सब बंधे हैं। अद्भुत, भगवान की माया ने वास्तव में बांधा है, ये जीवों में ऐसे स्नेह पैदा कर दिया है कि वे बच्चे का पालन करेंगे। मनुष्य अपने बच्चों का पालन करते हैं, पक्षी करते हैं, पशु करते हैं।